શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ તો કૃષ્ણ કથા की श्रृंखला में हम पहुंचे हैं दशम स्कंद के 36वें अध्याय पे, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध। कल हम सुन चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण असुरों का वध अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं और इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति बखूबी भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में कर दिखाई। वैसे वृंदावन में विशेष करके भगवान की लीलाएं बहुत मधुर होती हैं, क्योंकि वो केवल एक साधारण ग्वाल बाल की तरह प्रतीत होते हैं साधारण दृष्टिकोण से देखा जाए तो। परंतु भगवान श्री कृष्ण कभी कभी ऐसे भी कोई अद्भुत कार्य कर दिखाते थे जिससे कि ये साबित होता था कि ये तो स्वयं भगवान ही है। उदाहरणार्थ जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली के ऊपर 7 दिन और 7 रात धारण किया। ऐसा कार्य तो कोई साधारण या असाधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे बीच बीच में वृंदावन में भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया ताकि सबको समझ में आए कि यद्यपि भगवान एक साधारण ग्वाल बाल के रूप में प्रतीत हो रहे हैं परंतु वो हैं भगवान। तो ऐसे अनेक असुरों का वध भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ में किया। अब उधर श्री कृष्ण के मामा कंस बहुत बेचैन होते जा रहा था कि इतने सारे असुर आए वृंदावन में, फिर भी ये मेरे जितने घनिष्ठ मित्र हैं असुर गण, जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली असुर हैं वो सब मारे गए, कृष्ण को कोई हानि नहीं पहुंची। तो कंस ने सोचा कि और एक मेरा मित्र है अरिष्टासुर, और इसको मैं भेजूंगा, अवश्य ये श्री कृष्ण की हत्या करेगा क्योंकि ये तो बहुत बलवान है। अरिष्टासुर एक बहुत भयानक असुर था। जैसे कि पहले वृंदावन में आने वाले असुर भी थे, अरिष्टासुर ने एक वृषभ या बैल का रूप धारण किया, परंतु ये कोई साधारण बैल नहीं था। एक साधारण बैल भी यदि हमारी ओर आक्रमण करते या आक्रमणात्मक भाव से आए तो हम बड़े जल्दी से वहां से निकल पड़ेंगे, हम उसके साथ हाथ मिलाने के लिए खड़े नहीं रहेंगे वहां पे। तो जब साधारण बैल की बात ऐसी है तो अरिष्टासुर की परिस्थिति या ब्रजवासियों की परिस्थिति क्या हुई होगी जब अरिष्टासुर वहां पे आया। अरिष्टासुर एक बैल के रूप में अवश्य स्वीकार करके आया था, परंतु बहुत विशाल बैल था। सुखदेव गोस्वामी जी 36वें अध्याय में वर्णन करते हैं, श्री बादरायणी उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, व्यास देव जी का नाम है बादरायण, इसलिए उनके पुत्र का नाम भी है बादरायण। तो सुखदेव गोस्वामी के अनेक ऐसे नाम हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अरिष्ट जो कि वृषभासुर है वह आया और बहुत ही भयानक लग रहा था। उसने अपने खुरों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर ऐसी ध्वनि की, इतना जोर से चल रहा था कि सारी पृथ्वी कांप रही थी, और उसके पीठ में जो डिल्ला था, जो ककुद कहते हैं संस्कृत में, ककुद या हिंदी में भी ककुद कहते हैं, साधारण भाषा में डिल्ला कहते हैं, तो वो इतना ऊंचा था कि बादलों को लगा कि ये कोई पहाड़ है। और जैसे बादल एक पर्वत के आसपास हमेशा मंडराते हैं, उसी तरह है अनेक बादल अरिष्टासुर के डिल्ले के आसपास मंडरा रहे थे और बड़े जोर से तेजी से भागते हुए अरिष्टासुर वृंदावन में प्रवेश कर गया। वैसे आचार्यों ने टीका की है कि जिस समय अरिष्टासुर का प्रवेश वृंदावन में हुआ वो प्राय सूर्यास्त का समय था और श्री कृष्ण रास लीला की तैयारी में लगे हुए थे। रास लीला प्रारंभ होने ही वाली थी कि उस समय वृषभासुर वहां पर चले आए। प्रदोषार्धे कदाचित्तु रासासक्ते जनार्दने त्रासयन समदो गोष्ठम अरिष्टः समुपागतः। प्रदोषार्धे मतलब रात के बीच में या जब समय का परिवर्तन होता है उसके ठीक बीच में सूर्यास्त के समय, रासा सक्ते जनार्दने, जब जनार्दन श्री कृष्ण रासलीला की तैयारी में थे तो उस समय अरिष्टासुर समदह एक पागल बैल के समान बड़े तेजी से प्रवेश कर गया वृंदावन में। तो जब वो आया तो क्या कर रहा था, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो जोर से रंभाते हुए धरती को खुरों से वो कुरेदे जा रहा था। तो और साधारण बैल का रंभन भी बहुत काफी भारी होता है और अरिष्टासुर के रंभाने से, रंभाते हुए जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसे सारे ब्रजवासी घबरा गए। साथ साथ अपने खुरों से वो कुरेद रहा था जमीन को। बैल ऐसे अक्सर करते हैं, आपने देखा होगा कहीं बैल को किसी ने बांधा हुआ होगा, किसान ने, आपने देखा होगा कि एक जगह जब बैल खड़ा रहता है तो अपने खुरों से जमीन को कुरेदते रहता है। ये तो बहुत बड़ा बैल था, बैल का रूप केवल धारण किया था इसने, साथ साथ अपनी पूंछ ऊंची थी और आंखें चमक रही थी, बड़े क्रोध के दृष्टि से सारे वृंदावन की ओर वो देख रहा था। और जैसे वो आगे दौड़ते हुए आ रहा था जगह जगह में मलमूत्र का त्याग भी करते जा रहा था। तो एक बहुत भयानक दृश्य था, अरिष्टासुर ऐसे प्रवेश कर रहा था। तो जैसे ही वृंदावन के निवासियों ने इस भयानक दृश्य को देखा तो वो बहुत ही घबरा गए, इतने भयभीत हो गए कि ऐसे वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जितने भी गर्भिणी गौवें और स्त्रियां थीं उनके गर्भपात हो गए। केवल उस ध्वनि के कारण, उस दृश्य के कारण। तो ऐसे अवस्था थी ब्रज भूमि में, जबकि अरिष्टासुर वहां पे दौड़ते हुए चले आया। और आगे चलते चलते जितने भी पशु वहां थे वो सब वहां से भाग गए, अपने गोचर भूमि से आदि डर के मारे वो सब भाग गए। और ब्रजवासियों के लिए और क्या चारा था और क्या उपाय था? ब्रजवासी गण जो है वो कृष्ण के पास आए। कृष्ण का नाम पुकारते पुकारते कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने के लिए आए। ब्रजवासी गणों की विशेषता ये है कि उनके जीवन में श्री कृष्ण के प्रति और कोई आश्रय नहीं था, शत प्रतिशत शरणागत भक्त थे ब्रजवासी। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये और एक असुर आया हुआ है वृंदावन में, प्रतिदिन कोई ना कोई असुर आता है, इस बार हमारे गांव के भीतर चले आया है, तो डर के मारे कृष्ण कृष्ण कह के पुकारने लगे। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः, गोविंद के शरण में वो सब गए कृष्ण कृष्ण ऐसे पुकारते हुए। शरणागति के अनेक लक्षण हैं और एक लक्षण ये है शरणापत्त या शरणागत भक्त के, कि वो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हुए उनकी रक्षा में पूरा विश्वास करते हैं। रक्षिष्यति इति विश्वासो, तो ब्रजवासियों को भी पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे। वैसे जब श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ था तो उस समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम् अंजस तरिष्यथ, कि ये तो बच्चा है, ये लड़का है श्री कृष्ण, ये आपको समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त करेगा, तरह तरह के कठिन परिस्थितियों से आपको पार कराएगा। तो ब्रजवासियों को ये याद था कि हाँ ऐसे भविष्यवाणी हुई है, हमारे कुल गुरु गर्ग ऋषि ने ऐसे कहा है। और वो सोचते थे कि भगवान नारायण शायद हमारे इस लाडले बच्चे को शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिससे कि वो हमारी रक्षा बड़ी अच्छी तरह से करे। अपने शुद्ध मधुर व्रज के भाव में उनको क्या पता था कि यही नारायण के भी उद्गम हैं, कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो अपने मधुर भाव में वो ऐसा सोचते थे कि भगवान नारायण की कृपा से ये बच्चा हमारी रक्षा कर पा रहा है। वास्तव में रक्षा तो भगवान नारायण कर रहे हैं, हमारे कृष्ण को, हमारे कन्हैया को एक निमित्त बनाकर, ऐसे सोच रहे थे वो। परंतु कृष्ण हो या नारायण, हैं तो वो एक ही व्यक्ति। रस के दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का भाव अलग अलग होता है। नारायण भगवान तो वैकुंठ लोकों में रहते हैं, श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं, अपने प्रेमी व्रज भक्तों के साथ में शुद्ध मधुर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण बताते हैं, मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादातरिष्यसि, कि यदि हे अर्जुन तुम मेरे शरण को ग्रहण करोगे, तुम सदैव मेरा चिंतन करते रहोगे, तुम्हारे चित्त में यदि केवल मैं ही रह जाता हूं तो फिर सारे समस्त दुर्गाणि, दुर्गाणि अर्थात जो कष्ट हैं, सारे कठिन परिस्थितियों से मैं तुम्हें पार अवश्य कराऊंगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है। भगवत गीता में तो बार बार ऐसे श्री कृष्ण आश्वासन दिलाते रहते हैं अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सबको कि यदि हम श्री कृष्ण भावना भावित रहे तो फिर ऐसे शरणागत और भक्ति के भाव में हमें निडर होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमारी समस्त प्रकार के क्लेशों से कष्टों से हमें राहत देंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे। जब इंद्रदेव ने भीषण वर्षा बरसाई थी वृंदावन के ऊपर, ब्रजवासियों के ऊपर, क्योंकि इंद्रदेव को क्रोध आ गया था, ये ब्रजवासी गण पहले मेरे प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने वाले थे, परंतु इस छोटे से नटखट बालक के कहने पर उन्होंने मेरे यज्ञ को बंद कर दिया और गोवर्धन की पूजा कर दी, तो मेरे प्रति इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो ऐसे मान के ऊपर ठोस पहुंची इंद्रदेव की। इंद्रदेव ने सारे संवर्तक बादलों को बुलाया और कहा कि पानी बरसाओ ब्रजभूमि के ऊपर और इनको अच्छी तरह से सबक सिखाओ ताकि इनकी नानी याद आ जाएगी। तो ये सामर्थक बादल वास्तव में केवल सृष्टि के प्रलय के समय काम करते हैं, लेकिन इंद्रदेव को इतना क्रोध आया था कि समय के पहले ही बुला दिया इन बादलों को। तो ऐसी वर्षा होने लगी कि सारे ब्रजवासियों को और कोई सहारा नहीं था, और कोई उपाय नहीं था। खंभों की तरह, स्तंभों की तरह पानी गिर रहा था, केवल बूंद के रूप में नहीं, खंभे के खंभे पानी के गिर रहे थे और शीघ्र ही पानी सारे ब्रजभूमि में भर गया। जब ब्रजवासियों ने देखा कि उनको गायों को कितना कष्ट हो रहा है, उन्हें स्वयं भी कितना कष्ट हो रहा है, तो उनके लिए क्या रास्ता था? बस एक ही रास्ता, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथन गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः। तो हे महाभाग्यवान कृष्ण, आप जो कि गोकुल के नाथ हैं, गौओं के नाथ हैं, आप हम सब ब्रजवासियों के नाथ हैं, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, अभी आप त्रातुम अर्हसि हमारी रक्षा कीजिए। किन से रक्षा कीजिए? देवान्नः कुपिता, जो देव हैं इंद्र, वो हमारे ऊपर कुपित हुए हैं, क्रोधित हुए हैं। तो आप भक्त वत्सल हैं और हम सब आपके भक्त हैं, तो इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सल अर्थात जो कि एक गाय के समान अपने, जैसे एक गाय अपने बछड़ों का देखभाल करती है, बछड़ों के प्रति स्नेह की भावना रखती है, वैसे भगवान अपने भक्तों के प्रति रखते हैं। साथ साथ वत्सल का भाव ये भी है कि भक्त भगवान के हृदय के बहुत निकट होते हैं, तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, जिस तरह से भक्त भगवान से भी प्रेम करते हैं। तो जब भक्तों को कोई कठिनाई होती है तो भगवान को सहन नहीं होता है और तुरंत भगवान वहां उस भक्त को बचाने के लिए, रक्षा प्रदान करने के लिए चले आते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तो बहुत विकट परिस्थिति है वृंदावन में, और भगवान समझ गए कि ये तो इंद्रदेव का कार्य है, उन्होंने सोचा वैसे देवगण जो होते हैं वो तो सत्वगुण में होते हैं, परंतु सत्वगुण में स्थित होकर ऐसे अहंकार को अपने हृदय में लाना, ये तो ठीक नहीं है। देवगणों के हृदय में ऐसे अहंकार उत्पन्न होना ये तो बिल्कुल उचित नहीं, ये शोभा नहीं देता देवगणों को, इसलिए मैं इंद्रदेव को राहत दूंगा। कैसे राहत दूंगा? जो उसके हृदय में बहुत बड़ा भोग बोझ है ना, वो बोझ को मैं कम कर दूंगा। वो बोझ क्या था इंद्रदेव के हृदय में? अहंकार का बोझ। तो भगवान ने इंद्रदेव का मान भंग करके इंद्रदेव का बोझ हल्का कर दिया। तो कभी कभी जब भगवान देखते हैं कि उनके कोई भक्त के हृदय में अहंकार आ गया है, तो बड़े प्रेम से वो ऐसे बोझ हल्का करते हैं। भगवान तो बड़े प्रेम से करते हैं, लेकिन जिसका बोझ कम हो गया है, क्योंकि वो अपने अहंकार से बहुत आसक्त होता है, उसे बहुत कष्ट होता है। एक बार कहीं हम अभी प्रवचन दे रहे थे, तो एक भक्त ने प्रवचन के बाद प्रश्न पूछा। शायद उस भक्त का किसी दूसरे भक्त से कोई मतभेद हुआ होगा। तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों से प्रेम करते हैं, तो यदि दो भक्तों के बीच में कोई मतभेद हो जाए तो भगवान किसका पक्ष लेंगे? तो हमने उत्तर दिया, भगवान दोनों का पक्ष लेंगे, और दोनों का पक्ष लेके उनके हित के लिए कार्य करेंगे। पक्ष में होने का मतलब क्या है? कि हम किसी व्यक्ति के हित के लिए कार्य करेंगे। जब हम मानते हैं कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, तो हमारे मित्र के हित के लिए हम कार्य करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि हम पक्षपात कर रहे हैं। परंतु भगवान वैसे किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, असुरों से प्रेम करते हैं, नास्तिकों से प्रेम करते हैं। नास्तिक और असुर भगवान से प्रेम नहीं करते, वो दूसरी बात है, परंतु भगवान के हृदय में सबके प्रति शुद्ध प्रेम ही प्रेम है। तो खैर, फिर हमने उत्तर दिया कि भगवान दोनों का पक्ष लेते हैं, परंतु भगवान के पक्ष लेने का तात्पर्य क्या है ये दूसरी बात है। भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि वो एक चक्की के समान कार्य करते हैं। जब दो भक्तों के बीच में मतभेद होता है, चक्की क्या काम करती है? चूर करती है। तो दोनों भक्तों के अहंकार को चूर कर देते हैं भगवान। इस तरह से दोनों भक्तों के ऊपर कृपा कर देते हैं, क्योंकि जब दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद होता है, कोई गलत फहमी होती है, तो दोनों को तनाव होता है, दोनों का मन जो है बहुत बेचैन हो जाता है, दोनों को बड़ा क्रोध भी आता है। परंतु भगवान क्या करते हैं? दोनों के ऊपर कृपा करते हैं और इस तरह से दोनों का बोझ हल्का कर देते हैं। अभी अनादि काल से हम इतना बोझ लेकर आए हैं, बहात लेके जा रहे हैं। समझ लीजिए, आप किसी रेल यात्रा में जा रहे हैं, तो यदि आपके पास बहुत ज्यादा भारी सामान हो, कितना कष्ट होता है। बस एक छोटा सा बक्सा आपके पास हो, उसको लेकर आप जा रहे हैं, तो बस कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। यात्रा बहुत सुखदायक होती है, सुविधाजनक यात्रा हो जाएगी आपकी। परंतु भारी भारी बोझ होगा आपके साथ में, तो उतना कष्ट बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से संसार की यात्रा में हम बहुत भारी बोझ बहा के लेके जा रहे हैं। वो बोझ कहाँ है? हमारे हृदय में रखा हुआ है हमने, और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। अहंकार को त्यागो? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों त्यागूंगा अहंकार को? ये लोभ को त्याग नहीं त्याग सकते, तो ये लोभ को काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये बहुत भारी बोझ हैं हमारे हृदय में। और भगवान की असली कृपा हमारे ऊपर तब होती है जबकि वो इस बोझ को हल्का कर देते हैं। और बोझ को हल्का करते करते कभी कभी हमें कष्ट भी होता है, परंतु ये कष्ट हमारे भलाई के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान भंग कर दिया, इंद्र के ऊपर भी कृपा कर दी, साथ साथ ब्रजवासियों के ऊपर भी कृपा कर दी। तो देखिए, जब कोई साधारण व्यक्ति एक व्यक्ति के पक्ष में जाता है, केवल उसके हित के लिए कार्य करता है, लेकिन जो पूर्व पक्ष में है उसके अहित के लिए वो कार्य करता है। ये साधारण संसार की बातें हैं, परंतु जब भगवान किसी का पक्ष लेते हैं तो हित दोनों का करते हैं, जिनका पक्ष लेते हैं उनका हित भी करते हैं और जो उनके पूर्व पक्ष में हैं उनका भी हित करते हैं। तो इंद्र का हित हुआ और ब्रजवासियों का हित तो हुआ ही हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा कर दी। और इतना ही नहीं, ब्रजवासियों को एक अनमोल अवसर प्रदान किया जो कि उनको साधारण अवस्था में प्राप्त नहीं होता था। और वो क्या था कि 2400 घंटे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण कर दिया तो सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण किया, आओ आओ, आइए आइए, आप सब आइए, गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े रहिए। शुरुआत में अवश्य स्वाभाविक है, सब हिचकिचाए गोवर्धन पर्वत के नीचे जाने के लिए, परंतु कृष्ण के प्रति इतने शरणागत थे, इतना विश्वास था उनका कृष्ण के ऊपर कि वो चले गए पर्वत के नीचे। और जैसे ही श्री कृष्ण धारण करते रहे पर्वत को, ब्रजवासी गणों की आंखें श्री कृष्ण के ऊपर इस तरह से केंद्रित थीं जैसे कि चातक किसी बादल को देखता है या चकोर चांद को देखता है और अपनी दृष्टि हटाता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से ब्रजवासियों के आंखें जो हैं वो केवल श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद के ऊपर केंद्रित थीं। और भगवान के सौंदर्य के अमृत का पान अपने नेत्रों से ब्रजवासी करते रहे। तो कितनी बड़ी कृपा हुई ब्रजवासियों के ऊपर, ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन 2400 घंटे 7 दिन करने के लिए अवसर मिल गया। कष्ट तो हुआ उनको, लेकिन उस कष्ट के कारण क्या हुआ, क्या लाभ उनको मिला, देखिए भगवान श्री कृष्ण का ये एक उनको विशेष कृपा उनको प्राप्त हो गई। तो उनकी खूबी ये थी कि वो भगवान कृष्ण के शरण में गए, इसलिए उनको ऐसी भेंट भगवान ने दी। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कार्य करते हैं। तो इंद्रदेव के वर्षा के भेजे हुए वर्षा के कारण ब्रजवासी गण कृष्ण कृष्ण महाभागापन्नाथम गोकुलम प्रभो करके आए उनके पास। ठीक उसी तरह से जब अरिष्टासुर भी यहाँ पे चले आया तो ब्रजवासी गण सीधे कृष्ण को पुकारते पुकारते आए, कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। कृष्ण कृष्ण कहते हुए जोर से पुकारते कृष्ण के पास आए। तो कृष्ण को बड़ा क्रोध आया कि ये फिर कौन आ गया असुर मेरे प्रिय ब्रजवासियों को कष्ट देने के लिए, तो मुझे तुरंत देखना होगा कि समस्या क्या है। तो श्री कृष्ण आए और तुरंत उनसे कहने लगे, मां भैष्ट मतलब डरो नहीं, तो मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं पहुंच गया हूं। भगवान ऐसे आश्वासन जगह जगह देते हैं अपने भक्तों का हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में आ जाता है तो कभी कभी उसका मन डावाडोल हो जाता है, उसकी श्रद्धा थोड़ी कमजोर भी हो जाती है कि क्या भगवान रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, इतना समय हो गया, कष्ट चल रहा है, कब आएंगे भगवान, कब भगवान की कृपा होगी। इसलिए भगवान जगह जगह एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार दोहराते रहते हैं कि विश्वास रखो, मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा शरण ग्रहण करना होगा, शरण को छोड़ना नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरे शरण को ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं, मां शुचः। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था मां शुचः, डरो नहीं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को अब कहा मां भैष्ट, तुम बिल्कुल डरना नहीं। और जैसे गोवर्धन के समय भगवान सोच रहे थे कि मेरे भक्तों को इतना कष्ट हो रहा है, ये ठीक नहीं है, मैंने तो वचन दिया हुआ है कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा। और वैसे आगे चल के भगवत गीता में भी भगवान ऐसे बोलने वाले थे। वैसे पूर्व जब वो त्रेता युग में श्री रामचंद्र के अवतार में आए थे, उस समय भी उन्होंने बारंबार यही आश्वासन अपने भक्तों को दिया था, सकृद एव प्रपन्नो यह तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददाम ये तद व्रतम मम। यदि एक बार भी कोई मेरे पास आके मेरा शरण ग्रहण करता है और कहता है कि हे प्रभु तव अस्मि, मैं आपका हूं, तो मैं तुरंत उसे निर्भयता प्रदान करता हूं। एतत् व्रतम मम, और ये मेरा व्रत है। तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे गोवर्धन लीला के पहले कि मैंने तो व्रत लिया है कि मैं तो मेरी भगवान की, मेरे भक्तों की रक्षा तो करूंगा, तो इस समय भी मैं अवश्य मुझे करना चाहिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही यहाँ पे सोच रहे थे कि अभी मेरे भक्तों की रक्षा तो मुझे करनी चाहिए, तो सीधे उस असुर के सामने गए और सामने जाके उसे कठोर शब्द कहने लगे श्री कृष्ण, जो कि ऐसे असुर को कहना उचित था। और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया। गोपाल ही पशुभीर मंद त्रासित ही किम असत्तम मई शास्तारी दुष्टानाम त्वत विधानाम दुरात्मनाम। मंद अर्थात मूर्ख, हे मूर्ख, असत्तम, असत्तम अर्थात जो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है, ते हे मूर्ख, हे दुष्ट, हे दुरात्मा, तुम क्यों यह आए हो मेरे प्रिय भक्तों को कष्ट देने के लिए? क्या तुम नहीं जानते हो मई शास्तारी दुष्टानाम, दुष्टों को शासन देने वाला, दुष्टों को ठीक करने वाला व्यक्ति मैं हूं, क्या मुझे नहीं पहचानते? तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की, घोषणा क्या, ललकारा और भर्त्सना की अरिष्टासुर की। हाँ, वैसे तो भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं दंडो दमयताम अस्मि, कि दमन करने वालों में से मैं दंड हूं। तो जब दंड किसी को भगवान देना चाहते हैं तो ऐसा दंड कि बस शायद और कहीं से उसने ऐसा दंड नहीं पाया होगा। जब भगवान किसी को दंड देते हैं तो बस खूबी से देते हैं, बढ़िया रूप से दे देते हैं दंड। तो ऐसे दमन करने वाले शक्तियां अनेक हैं इस भौतिक सृष्टि में। तो दमन करने वाले सृष्टि जो शक्तियां हैं वो सब श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, श्री कृष्ण से ही आती हैं। जैसे राजा वो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए ऐसे देव परायण, धर्म परायण राजा को नार देव कहा जाता है, जो नर रूप में भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण भगवान तुल्य माना जाता है। वो भगवान तो है नहीं, परंतु भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण भगवान के कार्यों को वो संपन्न करता है। तो भगवान के क्या कार्य हैं? सृष्टि से संबंधित, धर्म की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, सज्जनों की रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना। तो भगवान के ये जो कार्य हैं ये राजाओं को करना चाहिए, क्योंकि राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए वो क्षत्रिय कहलाते हैं। क्षत्रिय अर्थात जो प्रजा को कष्ट से राहत दे, कष्टों से रक्षा करे। तो वैसे राजा को चाहिए कि वो कभी कभी दुष्टों का दमन करे, जैसे परीक्षित महाराज अपने राज्य में भ्रमण करते रहते थे देखने के लिए कि कोई अधर्मी व्यक्ति उत्पात तो नहीं पैदा कर रहा है ना मेरे राज्य में। जो धर्म पारायण प्रजा है उनको कोई दुष्ट व्यक्ति कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा है ना, सब लोग धर्म का पालन कर रहे हैं ना, ये देखने के लिए राजा परीक्षित घूमते थे अपने राज्य में। और ऐसे एक बार भ्रमण के समय उन्होंने एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति को देखा जो वास्तव में मूर्तिमान कली था। कली अर्थात इस कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप। और ये कली गाय और बैल के ऊपर आक्रमण कर रहा था। तो तुरंत उस व्यक्ति का दमन परीक्षित महाराज ने किया। तो ऐसे राजा के अंदर भी दुष्टों के दमन करने की शक्ति होती है। वैसे भगवान के अनेक शक्त्यावेश अवतार होते हैं, उनमें से एक अवतार है परशुराम। भगवान के प्रत्येक शक्त्यावेश अवतार को भगवान ने कोई न कोई विशेष शक्ति प्रदान कर दी होती है। जैसे पृथु महाराज को प्रजा पालन शक्ति, नारद जी को भक्ति शक्ति, चतुष कुमारों को ज्ञान शक्ति, अनंत को स्वसेवन शक्ति, अपनी ही सेवा करने की शक्ति, शेषनाग को भू धारण शक्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति, उसी प्रकार से या पृथु महाराज को प्रजा पालन शक्ति, उसी तरह से परशुराम को उन्होंने दुष्ट दमन शक्ति प्रदान की थी, दुष्टों को दमन करने की शक्ति। तो ये शक्ति भी तो भगवान की शक्ति है। इसलिए जब ऐसे हम देखते हैं कि कोई दुष्टों को दमन कर रहा है तो हमें जानना चाहिए कि ये शक्ति भगवान की है। तो जब शक्ति भगवान की है दुष्टों को दमन करने की, तो जब स्वयं भगवान आके किसी दुष्टों को दमन करना चाहें तो फिर कैसे अद्भुत दृश्य होगा वो, और किस तरह का दंड भगवान देंगे। तो भगवान जब आते हैं, अवतार लेते हैं यहां पर, और कभी कभी असुरों को ऐसे दंड देते हैं। पहले हम नानी को याद आने वाली बात कही थी, लेकिन जब कृष्ण ने कालिया का दमन किया तो कालिया को बेचारे को एक नानी तो क्या, अनेक जन्मों की नानियां याद आई होंगी, ऐसा दंड दिया कालिया को। कालिया की इतनी बुरी हालत हो गई, ऐसी दशा हो गई कि अंत में कालिया को श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना ही पड़ा। तब श्री कृष्ण ने कालिया को स्वीकार किया, फिर कालिया भी भक्त बन गया। कालिया की पत्नियां जो हैं वो तो भक्त थी ही, अब कालिया भी भक्त बन गया क्योंकि भगवान ने शरणागत कालिया को स्वीकार कर लिया। भगवान का एक सख्त नियम है, किसी शरणागत व्यक्ति को वो टुकराते नहीं है। जो भी भगवान के शरण में आता है भगवान उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। और इसलिए कालिए के फण जो हैं वो बहुत पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि उनके फण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से अंकित हैं। उनके फण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूली से सुशोभित हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से नृत्य कर चुके थे उन फणों के ऊपर। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को नाम दिया कालिया फणी दास। ये दास हैं कालिया के फणों के, क्योंकि ये तो अभी धाम बन गया, कालियों की फणी फणे जो हैं तो धाम बन गए क्योंकि भगवान के चरण कमल वहां पर थे। तो ऐसे भगवान कभी कभी दंड देते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं क्या तुम नहीं जानते मई शास्तारी दुष्टानाम, कि दुष्ट लोगों को दमन करने वाला, दंड देने वाला मैं हूं, तुम नहीं जानते। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान अपने अवतार में आके दंड देते हैं दुष्टों को, परंतु जब उनका अवतार का समय नहीं होता है तब भी वह वही दंड देते हैं, भगवान ही दंड देते हैं, परंतु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। कभी कभी परीक्षित राजा जैसे राजा होते हैं जो भगवान की प्रतिनिधित्व करते हुए दुष्टों का दमन करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे राजा नहीं होते हैं, स्वयं राजा ही दुष्ट हो जाते हैं, रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं। तो फिर ऐसे दुष्टों का दमन कौन करता है? अप्रत्यक्ष रूप से भगवान करते हैं, माया के द्वारा, काल शक्ति के द्वारा, चाहे वो असुर कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो। ऐसा कोई असुर आज तक नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं आई या नहीं आने वाली है। मृत्यु सर्वहरस चाहम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही मृत्यु के रूप में आके सर्वस्व सबका हरण कर लूंगा, इसलिए उनका नाम है हरि। सब कुछ हर लेते हैं। तो वैसे भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान अपने शक्तियों के द्वारा दंड देते ही देते हैं। बीमारी दंड नहीं है तो क्या है? बुढ़ापा दंड नहीं है तो और क्या है? मृत्यु, जन्म, ये सब दंड नहीं है तो और क्या है? जब किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो सरकार क्या करती है, कहां भेजती है उसको? कारागार में भेजती है, जेल में भेजती है। तो उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना पड़ता है। हम कहते हैं कि ये गिरफ्तार हो गया है, इसे दंड मिल रहा है। तो माँ के गर्भ में हम 9 महीने रहते हैं तो क्या वो कोई जेल नहीं है? वो भी तो दंड ही है ना। तो हम लोग ऐसे तो नहीं सोचते हैं। तो हम हैप्पी बर्थडे जरूर कहते हैं, तो हैप्पी क्यों है? क्योंकि कम से कम उस जेल से तो हम छूटे, बाहर तो निकले। कम से कम यहां कोई जेल में जब कोई कैदी होता है थोड़ा तो घूमने के लिए जगह मिलता है उसे, भले छोटा सा कमरा भी उसे दिया जाए। जो बहुत बड़े से बड़े गुनहगार होते हैं जिनको अकेले रखा जाता है, एक ही छोटे से कमरे में रखा जाता है, वो कम से कम उठ सकता है, खड़ा हो सकता है, आगे पीछे घूम सकता है। और दूसरे जो कैदियां होते हैं शाम के समय 1-2 घंटे शायद उनको छोड़ते हैं, मैदान में कुछ खेलते हैं, कुछ करते हैं, इधर उधर जाते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हिलने झुलने की कुछ सुविधा होती है? माँ के गर्भ में क्या सुविधा मिलती है? बैठने के लिए भी स्थान ठीक से नहीं है। माँ के गर्भ में बच्चे को कैसे रहना पड़ता है आप तो जानते ही हैं। तो ये तो बड़ा दंड है। तो भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा बद्ध जीव को दंड देते रहते हैं, देते रहते हैं। परंतु क्यों देते हैं? एक पालक अपने बच्चे को दंड क्यों देता है? एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को या छात्र को दंड क्यों देता है? एक गुरु अपने शिष्य को दंड क्यों देता है? अपने बच्चे के, शिष्य के, विद्यार्थी के भलाई के लिए। क्योंकि पालक के हृदय में, विद्यार्थी या अध्यापक के हृदय में या गुरु के हृदय में प्रेम रहता है कि चलो ये व्यक्ति हमारे ऊपर निर्भर है, इसके भविष्य को ठीक बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। और अब ये बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, मैं इसे ठीक नहीं करूंगा दंड देके तो ये बिगड़ जाएगा, इसका भविष्य भी बिगड़ जाएगा, इसका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसे जब दंड दिया जाता है तो ये भी एक प्रेम का ही रूप है। सरकार एक अच्छी सरकार हो समझिए कहीं, और वो किसी गुनहगार को जेल में डालती है तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार में सब क्रूर लोग भरे पड़े हैं जिनको बहुत आनंद आता है देख के कि सब लोग प्रजा जो है जेल के अंदर चली जाए। हाँ, ऐसे भी सरकार कई हैं दुनिया में, कभी ऐसे दुष्ट राजा आते हैं जो इस तरह से अत्याचार करते हैं प्रजा के प्रति, परंतु अच्छी कोई सरकार हो तो वो तो जानबूझकर जेल में भर्ती नहीं करती लोगों को, और जेल में डालने का उद्देश्य भी रहता है कि ये व्यक्ति इस कष्ट के कारण सुधर जाए, अब अपने गलत कामों को छोड़ दे, सही रास्ते पे चले आए। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान भी चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो दंड देते हैं किसी को, किसी को अर्थात हम सबको, तो हमें जानना चाहिए कि ये जो कष्ट का अनुभव हम संसार में करते हैं इस दुखालयम अशाश्वतम में, ये दुख, ये क्लेश, ये कष्ट भगवान की कृपा है हमें याद दिलाने के लिए कि देखो ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है, ये भौतिक सृष्टि है, ये जड़ पदार्थों से बना हुआ है, तुम तो आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप वाले हो, तुम मेरा शाश्वत कणमात्र अंश हो, तुम्हारा मुझसे प्रेम का संबंध है, शाश्वत संबंध हमारा है, तुम्हारा वास्तविक स्थान, तुम्हारा स्वरूप मेरे साथ में, मेरे धाम में, आध्यात्मिक जगत में है, तुम यहां पे अपना व्यर्थ समय गंवा रहे हो, चलो आओ मेरे पास। तो संसार में दुख क्यों है, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े दार्शनिक भी नहीं दे पाए हैं, परंतु भगवत गीता श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के अनुसार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस संसार में दुख इसलिए है कि ये भगवान की कृपा है हमें उन तक वापस ले जाने के लिए। तो भगवान जब कहते हैं मई शास्तारी दुष्टानाम, दुष्टों का दमन करने वाला मैं हूं, उनको दंड देने वाला मैं हूं, तो हमें जानना चाहिए कि भगवान भी बहुत कृपालु बन रहे हैं। इस तरह से अरुष्टासुर को उन्होंने ललकारा, और ललकारने के बाद श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने हथेलियों से अपनी बाहें ठोंकी, जैसे मल्लयुद्ध करने के पहले जो कुश्ती करते हैं लोग ऐसे करते हैं, अपने हथेलियों से अपने बाहें ठोंकते हैं इस तरह से, और आवाज निकालते हैं उससे, ताकि जो सामने वाला है उसका हौसला कुछ कम हो जाए, उस सामने वाले के हौसले को देखे तो दूसरे वाले का हौसला कम हो जाता है, तो सामने वाला वो भी ऐसे और ज्यादा जोर से ठोकेगा, ठोकता है ताकि और ज्यादा आवाज निकले, जितनी जोर से आवाज निकले उतना अच्छा माना जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण कालिया दमन करने वाले थे तो एक कदंब वृक्ष के ऊपर चढ़े, और वहां चढ़ के उन्होंने देखा कि इस नदी के यमुना जी के अंदर वो दुष्ट सांप है, तो बड़े जोर से उन्होंने वैसे अपने हथेलियों से बाहें ठोंक दी और बड़े जोर से आवाज आया, फिर कूद पड़े पानी के अंदर भगवान। तो यहां भी भगवान अरिष्टासुर के सामने खड़े हुए और जोर से अपने बाहों को ठोंकने लगे, और अरिष्टासुर सामने से आ रहा है, अपनी लाल लाल आंखों से देख रहा है कृष्ण को कि इसकी ऐसी कैसी मजाल हो गई कि मेरे सामने आके ऐसे बाहों को ठोक रहा है। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चेहरे पे कोई तनाव नहीं था, केवल अपने मित्र के कंधे पे एक हाथ ऐसे रखा और आराम से कंधे पे ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए। सामने से भयंकर असुर आ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण को डर नहीं, तो इस दृश्य को देखकर अरिष्टासुर के मन में क्रोध और भी बढ़ गया, और फिर जब अरिष्टासुर श्री कृष्ण के पास आया तो श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर से कैसे निपटाया और किस तरह का युद्ध दोनों के बीच में हुआ और उसके बाद क्या हुआ, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल शाम को यहीं आना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दो मिनट हैं, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। प्रश्न ये है कि दोनों श्री रामचंद्र ने और श्री कृष्ण ने रक्षा का आश्वासन दिलाया है, वचन दिया है, तो किनके वचन के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं? दोनों के, दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर नहीं है। श्री राम भी श्री कृष्ण ही है जो कि एक विशेष भाव में प्रकट हुए हैं। जब श्री कृष्ण एक अमुक भाव में प्रकट होते हैं तो उन्हें श्री राम कहते हैं, किसी दूसरे भाव में अपने आप को प्रकट कराते हैं तो नरसिंह भगवान हो जाते हैं। ऐसे ये जो भिन्नता अवतारों के बीच में है वो एक रस या भाव की भिन्नता है, तत्व की नहीं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे अवतार भगवान ही हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण के वचन में और श्री राम के वचन में कोई अंतर नहीं है। तो ठीक है, अब समय हो गया, अब आरती अनाउंसमेंट, ठीक है, थोड़ी सूचनाएं हैं। हरे कृष्णा।